نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے اور آج کا سیشن نماز کا بیان اسی ٹاپک کا اگلا حصہ ہے. حدیث نمبر ہے 270 اور پیج نمبر ہے 228. ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ایسی جگہوں پہ جن کو عموماً مسجد نہیں کہا جاتا یعنی گھر یا کوئی اور چیزیں تو اس میں کیا مسجد بنائی جا سکتی ہے. تو ہمارا آج کا پہلا ٹاپک کیا ہے, المساجد فی البیوت, گھروں میں مساجد بنانا. تھوڑا سا پہلے اس کو سمجھ لیجئے پھر ہی اس کا ہم موضوع سمجھیں گے. اور وہ کیا ہے کہ عام طور پہ جب ہم مسلم ملکوں میں ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مسجد کا کانسیپٹ مختلف ہوتا ہے. جب ہم کسی بھی جگہ جا کے نماز پڑھنا چاہیں تو ہم مسجد کے سائن کو ڈھونڈتے ہیں اور خاص طور پہ ڈوم کو ڈھونڈتے ہیں کہ مسجد جو ہے وہ اس کا نام ہے. اور وہاں چونکہ کمی بھی نہیں ہوتی مسجدوں کی تو ہمیں مشکل نہیں لگتا. لیکن جب ہم باہر کے ملکوں میں اسپیشلی نان مسلم ملکوں میں رہتے ہیں تو وہاں تھوڑے سے حالات فرق ہوتے ہیں. کئی جگہیں آج بھی ایسی ہیں دنیا میں کہ جہاں مسلمانوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے یا اتنے انف مسلم نہیں ہیں کہ وہ مسجد بنائیں, یا اگر مسجد بنائیں تو کس لیول کی بنائیں, لوگوں کے پاس چوائسیز نہیں ہیں. تو کیا ایسے وقت میں کوئی اپنے گھر کا ایک کونا جو ہے اس کو مسجد بنا سکتا ہے, یا گھر کے اندر رہتے ہوئے ساتھ کسی کمرے کو ایز اے پریئنگ روم یوز کیا جا سکتا ہے؟ آپ سوچیں گے کہ اس سوال کی ضرورت کیا ہے. تو ضرورت بالکل ہے, اس لیے کہ مسجد کے اوپر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں. یعنی مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر بندہ داخل نہیں ہو سکتا. پیریڈز کے اندر ایک عورت ہے وہ گزر جاتی ہے, یا وہاں وہ اگر ٹھہرنا چاہتی ہے تو نہیں ٹھہر سکتی, جمبی مسجد میں نہیں ٹھہر سکتا, اور اسی طرح سے کچھ خاص کام ہے کہ جو مسجد میں نہیں ہو سکتے. اب اگر آپ نے کسی گھر کے کسی کمرے کو مسجد بنا دیا یا پریئنگ روم, تو کیا پھر اس پہ بھی وہ ساری پابندیاں ہوں گی؟ وہاں کوئی سو نہیں سکتا, کوئی اور تعلق نہیں ہو سکتا. تو ان سب چیزوں کے لیے پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا گھروں میں مسجدیں بنائی جا سکتی ہیں. تو آئیے ذرا اس میں دیکھتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ کیا ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے. ان محمود ابن ربیع الانصاری رضی اللہ عنہ, حضرت محمود بن ربیع الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ان عتبان ابن مالک, کہ عتبان ابن مالک, وہو من اصحاب رسول اللہ, جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے, ممن شہید بدر من الانصار, جو کہ بدر میں شریک ہوئے تھے انصاریوں میں سے. یعنی صحابی عتبان بن مالک جو کہ انصاری تھے اور جو بدر کی جنگ میں شامل ہوئے تھے. اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, یعنی آئے آپ کے پاس, فقال, پھر کہا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, قد انکرت بصری, بس انکار کر دیا ہے میری نظر نے. مطلب کیا ہے کہ میری بینائی خراب ہو گئی ہے, میرا ویژن ویک ہے, میں اب ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں سکتا. آپ عربی کے الفاظ کے اوپر بھی غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں بہت گائیڈ لائن ملے گی اپنے لیے کہ کسی وقت کہیں عرب ملکوں میں جا کر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو تو کیا سمجھا سکتے ہیں. تو انکر تو انکار کر دیا ہے بصری, میری بصر نے, میری نظر نے, وانا اصلی لقومی, اور میں نماز پڑھاتا ہوں اپنی قوم کو, یعنی امامت کراتا ہوں. فاذا کانت الامطار, پس جب ہوتی ہے بارش, امطار مطر سے, مطر کہتے ہیں بارش کو. یہ کہاں آیا قرآن میں؟ سورۃ نساء میں, جہاں صلاۃ الخوف تھی کہ اگر بارش ہو تو پھر کیا کرو. ٹھیک ہے, سال الوادی الذی بینی وبینہم, تو بہہ پڑتی ہے وادی جو میرے اور ان کے بیچ میں, یعنی جب بارش ہوتی ہے تو وہاں بیچ میں وادی, لفظ وادی, اب اس کو اب ندی کہہ لیں, نالا کہہ لیں, جو بھی ہے اس چیز کو, یعنی اس وقت پھر چاروں طرف پانی ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری نظر کمزور ہے تو راستے میں جب بہت سارا پانی ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, لم مستطیع ان آتی مسجد ہوں, تو پھر نہیں میں کر سکتا یہ کہ پہنچوں ان کی مسجد میں, کہ فاصلی لہم, کہ میں نماز پڑھاؤں ان کو. یعنی پھر ایسے حالات میں مسجد میں نہیں جا سکتا کہ میں ان کو نماز پڑھاؤں. تو کیا میرا مسئلہ ہے, ووددتو یا رسول اللہ, میں خواہش رکھتا ہوں, میری یہ خواہش ہے کہ میں کیا کروں, انک تاتینی, کہ آپ آئیے, فتصلی فی بیتی, پھر آپ نماز پڑھائیں میرے گھر میں, یا نماز پڑھیں میرے گھر میں, پھر فاتخذہ مصلی, پھر بنا لوں میں اس کو جائے نماز, یعنی آپ میرے گھر میں آئیں اور وہاں جا کر نماز پڑھ لیں ایک بار. تو ایک اس چیز کی دلیل ہوگی کہ اس بات کو میں دوسروں میں شیئر کر سکوں کہ میں نے یہاں مسجد بنا دی ہے یا یہ جگہ مسجد ہے. उसने कहा कि मैं इसको जाय नमाज बना लूँ। काला, ये जो पहला काला है ये रावी है, यानी जो हदीस रिवायत करते हैं। रावी कहते हैं फ़काल लहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सअफअलु, अन करीब मैं ऐसा करूँगा, इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, यानी ठीक है जो तुम्हारी ख्वाहिश है मैं इसको पूरा कर दूँगा। काला इतबानु, फिर उत्मान कहते हैं फ़गदा अलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस सुबह के वक्त आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकरिन और अबू बकर ही न, उस वक़्त इरतफा नहारु, जब दिन चढ़ जाता है। यानी कहते हैं कि इसके बाद नबी सल्लम और अबू बकर मेरे घर तशरीफ़ लाए, जो वक्त कौन सा था, बिल्कुल दिन चढ़े, जैसे आप सोचिए 10-11 बजे का जो वक्त होता है। खैर, फ़स्ताज़न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इजाज़त तलब की रसूलुल्लाह ने, फ़ाज़िन्तु लहू, फिर मैंने उनको इजाज़त दे दी, फ़लम यजलिस, फिर आप नहीं बैठे, हत्ता दखल अल बैता, यहाँ तक कि आप दाखिल हो गए घर में, सुम्मा काला, फिर फरमाया, यहाँ देखिए कि किसी के घर में आने के अदब भी बता दिए गए इसमें। घरों में इस वक्त इस तरह दरवाजे और पर्दे नहीं होते थे, लेकिन घर में आने से पहले इजाज़त तलब की, जब आपने इजाज़त दे दी तो फिर आप आ गए और बैठे नहीं, और आते ही क्या कहा, ऐना तुहिब्बु अन उसल्ली मिन बैतिक, कौन सी है वो जगह जहाँ तुम पसंद करते हो कि मैं नमाज़ पढ़ूँ। क्या पता चला कि जिस काम के लिए आए हो फौरन ही वो काम कर देना चाहिए, तो आप आके इधर उधर की बातों में नहीं पड़े। हमारा हाल बाज़ दफ़ा क्या होता है, जिस काम आते हैं वो जाते हुए याद आता है, अरे जिस काम आई थी वो तो भूल ही गया। तो यह अमूमन औरतों का मसला होता है, क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत मल्टीटास्किंग होती हैं, तो मर्द वैसे भी टू दी पॉइंट होते हैं, जो काम करें करके कहेंगे अच्छा अब जा रहे हैं, हम कहेंगे आए आप बैठे और चाय पिए और फिर थोड़ी देर, और फिर काम 5 मिनट का करने जाते हैं और आधा घंटा लगा के आ जाते हैं, और फिर कहते हैं मियाँ का मूड बड़ा ख़राब होता है जब मैं बाहर जाती हूँ। तो इन चीज़ों को भी सीखना चाहिए कि जिस काम के लिए जाएं करें, और फिर करके फिर बाद में देखें वक्त का जो भी लिहाज है उसके मुताबिक काम करें। खैर, काला, ये कहते हैं फअशरतु इला नाहियति मिन अलबैति, उत्मान कहते हैं कि मैंने इशारा कर दिया अपने घर के कोने की तरफ, यानी जो जगह इन्होंने सोची हुई थी कि इसको बना ले। यहाँ से भी पता चलता है कि घर भी कोई इतना बड़ा नहीं था, कोई वहाँ कोई कई रूम्स नहीं थे कि चले एक फ्लोर में उन्होंने मस्जिद बना दी। हो सकता है कमरे में ये कोने में कह दिया हो, या हो सकता है कि कमरे के साथ कोई बड़ी हुई जगह हो। बहरहाल इशारा कर दिया कि इधर मैं चाहता हूँ। फ़काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़काम रसूलुल्लाह, बस खड़े हो गए अल्लाह के नबी, फ़कब्बरा, फिर तकबीर कही, फ़कुमना, फिर हम भी खड़े हो गए, फ़सफ़ना, फिर सफ़े बनाई हमने, यानी हम सफ़ बस्ता हो गए, फ़सल्ला रकअतैनि थुम्मा सल्लमा, फिर हमने 2 रकतें पढ़ी, फिर सलाम फेरा। यानी गोया कि आपने वहाँ जमात से नमाज़ पढ़ा दी। अब ये कौन सी नमाज थी? नफिल नमाज थी, क्योंकि 10-11 बजे कोई नमाज का वक्त नहीं था। तो क्या पता चला कि अगर कभी किसी तरह इस तरह के हालात कोई आ जाएं, तो नफिल की नियत पे अगर लोग मिलके पढ़ते हैं तो उसकी रुख्सत इसमें मिलती है। और वैसे भी वो नबी सल्लम थे, उनके इस काम से वो घर अगर एक मस्जिद में बदल रही है तो फिर ये करना तो लाजमी था। आमतौर पे तो नफिल जो होते हैं वो बग़ैर जमात के होते हैं, लेकिन ये एक इस्तिस्ना है कि कभी कभी नफिल जमात से भी पढ़े जा सकते हैं, जैसा कि तरावीन की नमाज हम पढ़ते हैं। काला, फिर फरमाया, फहबस ना हो अला खजीरती, फिर हमने रोक लिया उनको खजीरा खाने पर। खजीरा हलीम को कहते हैं, जैसे गोश्त की तरह का एक सालन होता है, कि जब ये काम हो गया, नमाज पढ़ी गई, तकबीर तहरीमा हुई, सबने पढ़ी 2 रकत, उसके बाद आप जाने लगे होंगे, तो कहते हैं वह हबस ना हो, हमने उनको रोक लिया। हु कौन है इधर? नबी सल्लम। अला, ऊपर खजीरा थी, खजीरा खाने गए। सना ना हा लहू, जो हमने तैयार किया था उनके लिए, यानी वो खाना जो हमने अल्लाह के नबी के लिए तैयार किया था उसके खाने के लिए आपको रोक लिया। काला, फरमाया, फसा बफिल बई तिरी जालुन अहले दियारी जबू आधा दिन, कहते हैं इसके बाद कई लोग जो थे घर में इधर उधर वो जमा हो गए। साबा का लफ्ज़ वही है जिसको सवाब कहते हैं, सवाब कहते हैं पलटने को, यानी सब लोग जो घर में इधर उधर थे वो सारे एक जगह जमा हो गए, और अहले दार घर वाले भी और महल्ले वाले भी, जबू आधा दिन जो कई थे, फज तमाऊ जो जमा हो गए। क्या पता चला कि अल्लाह के नबी ने खाना अकेले नहीं खाया, बल्कि आपके साथ अहले मोहल्ला में से कई घरों के लोग जो थे वो आकर जमा हो गए। खाना एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारों को जमा कर देता है। आप देखिए सारे घर में लोग कोनों कुदरों में घुसे होते हैं, अगर खाना साथ खाया जाए तो सब बैठते हैं। तो लिहाजा इसमें एक साइड इशू यह है कि अपने घरों में भी खाना खाने का इख्तमाम कैसे करें, मिल के खाएँ। कम अज़ कम घर में एक खाने का टाइम तो ज़रूर ऐसा हो कि जिसमें सब साथ बैठ के खाएं। पहले ऐसे ही होता था, अब तो दिन ब दिन रिवायात चेंज होगी, और ये चीज़ें हमें इनविलिजम के, यानी हमें सबको ये इनफरादी ज़िंदगी पर ला रहा है। अब आने का वक्त अलग हुआ तो खाने का फ़र्क हुआ, तो याद रखिए फिर खाने भी अलग हो गए। पहले सब एक साथ खाते थे तो एक ही खाना पकता था, सब बैठे एक ही डोंगे में, सब ले रहे हैं, किसी को छोटी बोटी मिली, किसी को बड़ी मिली। ना चाहते हुए भी हमारे बच्चों की तरबियत अच्छी होती थी, हम सब इसी मरहले से गुजरे हैं। अब जब हर एक के लिए अलग पकेगा तो ज़रा दी बेस्ट पकेगा। अब माँ ये तो नहीं करेगी कि आधी बोटी पकाएगी या गर्दन सिर्फ पका देगी या उसको बर्गर की जगह सिर्फ उसके अंदर कोई चिप्स भर देगी। इसलिए अब हमारे बच्चों में कुव्वते बर्दाश्त नहीं रही, और मैं हैरान होती हूँ फ़र्क कितनी जल्दी पड़ गया नस्लों में। यानी वो इश्यूज जो कभी इशू नहीं थे, नॉन पैटी इश्यूज जिसको इशू कह नहीं सकते, आज कोई दिन शायद ही ऐसा गुजरता हो कि मेरी नज़रों से कोई ऐसी चीज़ें ना गुजरें, कोई मसले, किसी के फ़ोन, किसी की कोई बात, कि जिसमें मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि आखिर इस बच्ची का प्रॉब्लम क्या है, आखिर इसको मुश्किल क्यों हो रही है, आज क्या वजह है। क्योंकि तरबियत का अंदाज़ फ़र्क। और आप चाहे अपने बच्चों को जितना मर्जी मशरकी माहौल दे रहे हैं, लेकिन मुआशरा जो उनको ट्रीट कर रहा है और जो वो इर्द गिर्द देख रहे हैं, उसका असर हमारे भी घरों में, यानी बाशऊर माओं के घरों में भी इसका असर है। वो चीज़ें जिसको हम लोग एक वक्त में ऑनर समझते थे, आज के लोग उसको मुश्किल समझते हैं। वजह क्या है कि तरबियत और माहौल का फ़र्क है। और वजह उसकी सिर्फ एक है कि शुरू से हर बच्चे को तवज्जो मिलती है, ये नहीं देनी चाहिए। एक घर में बैठ के एक छत में रहेंगे, अल्लाह ने आपको अगर इतनी भी तौफीक दी ना कि आप सोने के लुक में अपने बच्चों के मुंह में डालें, कहने की बात है, यानी आप उनको दी बेस्ट खिलाएं, फिर भी ना खिलाएं। अगर आप हर बच्चे की हर फरमाइश पूरी कर सकते हैं फिर भी ना पूरी करें, इसी से तो फिर वो बच्चे फिर बाद में आदी नहीं होते, शेयरिंग की आदत नहीं है, अपनी मर्जी के खिलाफ आदत नहीं है। बच्चा कहता है लाइट बंद करो, 5 मिनट के बाद लाइट बंद करें। बच्चा कहता है मुझे ये चाहिए, 4 मिनट के बाद उसकी बात पे कान रखें, ताकि कुदरती तौर पे उसमें टॉलरेंस पैदा हो, उसको बर्दाश्त की आदत हो। जब हाइपर हमने खुद उनको कर दिया तो बाद में फिर जिंदगियां कितनी दोभर हो गई हैं। यकीन करें मैं हैरान होती हूँ कि किस तरह से हालात चेंज होते हैं लोगों के, और सुबहान अल्लाह। और एक ही सबक सबको पढ़ाया जाता है कि सब्र, अभी सब्र, अभी सब्र, ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही सब इसी मरहले से गुजरते हैं। लेकिन जब इंसान इन चीज़ों को थोड़ा सा ले लेता है तो समझ आती है। आज आप देखिए कि आपके अपने बच्चे अपना फ्यूचर चूज करने के मामले में कितनी जल्दबाजी का एहसास करते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं ये पढ़ सकता, मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, मुझे ये स्कूल नहीं अच्छा लगा, ये टीचर पसंद नहीं है। अब एक घर में क्योस बरपा हो गया, अभी तो पहली रजिस्ट्रेशन दे के फारिग नहीं हुए तो अगली शुरू हो गई, तो लिहाजा थोड़ा सा सुकून अदब। अब यहाँ देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लम खाना खाने लगे, एक तरीका था कि आप अंदर बैठते और हजीरा खा रहे होते, लेकिन दूसरा ये कि सब मिलके बैठ रहे हैं खा रहे हैं, तो ये कितना अच्छा लगा होगा। यानी इस्लाम जो है वो मिलकर खाने को पसंद करता है। खैर फ़काल क़ाइलुम मिन्हुम, बस कहा किसी एक ने उनमें से जो कह रहा था, यानी कहने वाले एक ने कहा, ऐना मालिक इब्न दुखैशिन, कहाँ है मालिक बिन दुखैशिन, औ या उनका दूसरा नाम क्या था, इब्न दुखशन, यानी दो में से एक नाम है। और रावी को इसमें शुबह कि उन्होंने मालिक बिन दुखैशिन बोला या मालिक बिन दुखशन बोला। फ़काल बादहुम, तो बाज़ लोगों ने कहा, ज़ालिका मुनाफिकुन, वो तो मुनाफिक है, ला युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, वो ना अल्लाह को पसंद करता है ना रसूल को। देखिए अमूमन ऐसे ही किलो काल शुरू हो जाती है ना खानों पे। अब मिलके खाना तो अच्छी बात है, दावत में बैठे सब, लेकिन जो ही आप खाना खाने बैठते हैं बुराइयाँ शुरू हो जाती हैं। वो किधर, अच्छा तुम्हें क्या, उसको क्या शौक दर्स का, वो क्यों हदीस क्लास में आएंगी, और वो कुरान से क्या लगे, और वो तो है ही ऐसी, उनको तो तौबा नाम से बहर है, वो हमारी दुआ में कैसे शामिल होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी नेक महफिलों से उठकर बाद में ये गिबतें करते हुए देखें, सारा अजर ज़ाया हो जाएगा। उन्होंने ना आकर अजर नहीं कमाया, हम जाकर सब करके उनकी बुराइयां करके अजर ज़ाया करते हैं। तो अपनी ज़ुबान को सी लें, दिल में ख्याल आए दिल में ही रहने दें, उनके लिए दुआ कर दें कि अल्लाह अगर वो नहीं आए किसी वजह से या किसी नेगेटिव रवैये से, अल्लाह उनको ले आए, दैट्स इट। उनकी हिदायत की और अपनी हिदायत की दुआ करें। हम किसी को हिदायत पर बुलाने के लिए खुद क्यों गुनाहगार हों, समझिए। आप सोचिए, जैसे अब यहाँ हम हदीस के लिए आए, मैं आपको पढ़ाने आई, अब मैं एक चीज़ है कि आपको पढ़ाऊँ तो मुझे कुछ अजर मिलेगा ना। आप आए, आपको सुनना है, आप पढ़ने के लिए बैठे, आपको भी अजर मिलेगा। पढ़ाने के जब मैं कहूँ वो फलां किधर है, फिर आप में से कुछ शुरू हो जाए, वो उसके घर तो शादी है 6 माह बाद, तो वो तो आज ही तैयारियों में लग गई है, अच्छा भी छोड़ो, शुरू हो गए, अच्छा वो दूसरी सिस्टर किधर है, इधर इधर जगह क्यों खाली है, फिर उनको डिस्कस शुरू कर दें। आप मुझे बताइए कि पढ़ाने का सवाब होगा या इस डिस्कशन का, और नुकसान क्या हुआ कि जो नहीं आए वो तो बच गए, और आप में से जो सीरियस लोग पढ़ने आए थे वो कहेंगे हम क्यों आए, हम ये बातें सुनने आए थे तो हम घर बैठ के सुन लेते, राइट। तो हमेशा याद रखिए कि अपना काम करें जिस काम के लिए आए हैं, कोई भी नहीं है ना, आप अपना काम शुरू करें। जो ही लोगों ने किसी एक शख्स को डिस्कस करना शुरू किया और एक ने कहा वो मुनाफिक है, वो अल्लाह के रसूल को और अल्लाह को पसंद नहीं करता, इस तरह की बातें कर रहे थे, तो फ़काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया अल्लाह के नबी ने, ला तकुल ज़ालिका, मत कहो ये बातें। देखिए इससे पता चलता है कि किसी महफिल में अगर गीबतें होने लग जाएं और ऐसी कीलो काल है और डिस्कशंस हैं, तो किसी भी साहिब फरासत को अच्छे तरीके से रोक देना चाहिए कि देखिए ये बातें ना कीजिए। अल्लाह तराहू, क्या तुम नहीं देखते? कद काल ला इलाहा इल्लल्लाहु, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि वो खालिस अल्लाह के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है? यानी तुम कैसे उसके बारे में मुनाफिक के फतवे देने लग गए? वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है। युरीद बिज़ालिक वजह अल्लाह, और चाहता है इसके साथ अल्लाह की रजामंदी। ये सब कुछ करने के लिए, वो अल्लाह की रजा के लिए ये सब करता है, तो तुम उसको क्यों कहते हो? قال الله ورسوله اعلم। अब जूं ही आपने बात पलटी, देखिए लोग भी पलट गए, बात का रुख ही पलट गया ना। क्या कहा? अच्छा, अल्लाह और उसका रसूल जानता है, यानी फिर मुझे नहीं पता। तो यही खूबसूरत तरीका होता है चीज़ों को वाइंड अप करवाना सिखाएं। इवन इल्म की महफिलों में भी जब बात इधर से उधर जाने लगे, तो एक अच्छा कोऑर्डिनेटर कौन होता है? फौरन उसका रुख पलट दे, चलिए बात तक रहते हैं, चले इसी तक रहते हैं, इधर ना जाएं उधर। यही तो ट्रिमिंग होती है, काटा छांटी, और इसी से फिर इंसान अपना वक्त भी बचाता है और अपनी एफर्ट्स को भी बचाता है। तो काला फरमाया फ़ाइन्ना नरा वच्छहू व नसीहतहू इलल मुनाफिकी, कहते हैं बज़ाहर तो हम ये देखते हैं कि उसका चेहरा और उसकी खैर ख्वाहियाँ तो मुनाफिकों के साथ है। यानी आप देखिए कि नबी सल्लम ने कह दिया, आप चुप तो कर गए, लेकिन आखिरी जुमला फिर भी बोल रहे हैं कि अच्छा हमें तो वैसे ऐसे लगता है कि उसकी खैरख्वाही मुनाफिकों के साथ है। काला रसूलुल्लाह, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फ़इन्नल्लाह क़द हर्रमा अलन्नार, बस बेशक अल्लाह ने हराम कर दिया आग पर, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, हर उसको जिसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, यबतगी बिज़ालिक वजहल्लाह, जो चाहता है इसे अल्लाह की रजामंदी। तो कितनी खूबसूरत बात है, लोगों के ज़ाहिर पे क्यास कीजिए। हदीस में आता है कि लोगों के ज़ाहिर पे क्यास करें, अगर आप उनकी बातों में पढ़ेंगे और उनके साथ डिफरेंट चीज़ें करेंगे ना, तो आप उनको बिगाड़ देंगे। देखिए मैं और आप एक दूसरे के दिल नहीं जानते, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे का चेहरा ही देख सकते हैं, हालांकि चेहरे भी कई दफ़ा झूठ बोल देते हैं, लेकिन कभी किसी के बारे में डिस्कशंस ना करें। तो इस हदीस से क्या बात पता चली कि घर को मस्जिद बनाया जा सकता है हालात और ज़रूरत के मुताबिक। अब इसमें चंद बातें हैं जो शायद इधर तो मुझे नहीं लगता ये इशू है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये बात तो सब तरफ के लोग सुनेंगे, और अमेरिका में तो इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इधर जगह कम है ना, तो करीब करीब मस्जिदें, माशाल्लाह आप अगर अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो आपको वॉकिंग पे भी मस्जिदें मिल सकती हैं और दूर भी मिल जाती हैं। लेकिन वो नॉन मुस्लिम मुल्क जहाँ बहुत दूर दूर होती हैं, शहर बहुत बड़े हैं, 80-80 मील पे बाज़ दफ़ा लोग जुमा पढ़ने जाते हैं, तो फिर हर तरह की इजाज़त है। नंबर एक, किसी बिल्डिंग में, जैसे कोई आप स्ट्रिप मॉल है तो ऊपर घर है, नीचे कोई दुकानें हैं, आप एक शॉप लेके उसको मस्जिद बना दें, बना सकते हैं। फिर उस वक्त ये आपकी नियत होगी, 5 वक्त इधर जमात सिर्फ होगी तो भी ठीक है, उसको मुसल्ला कहते हैं। फिर आप कहते हैं कि नहीं, इधर सिर्फ जुमे के जुमे, जुमा पढ़ने आम दिनों में कोई नहीं आता, तो उसकी नियत कर लीजिए, और अगर उसको एक जामे मस्जिद के 5 वक्त की नमाज और जुमा जो भी करना चाहें कर सकते हैं। फिर नियत क्या है, इसको वक्ती तौर पे बना रहे हैं, इंशाल्लाह ये जगह बाद में बढ़ेगी, हम इसको छोड़ देंगे, किराए की जगह दूसरी में जाएंगे, ये भी मुमकिन है। आप कहते हैं नहीं, ये जगह वक्फ कर दी किसी ने, फिर उसमें गड़बड़ होती है, फिर उसको आगे जाके लेना होता है, या तो उसी जगह में रहेगी या फिर उसको बेच के जो पैसा आएगा वो वक्फ होगा। तो ये बहरहाल इश्यूज हैं। आप और हम अपने घरों में भी इस तरह से इख्तमाम कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए, ये नहीं कि फिर अब बाकी घर को ऐसी चीज़ों से भर दें कि जहाँ बस नमाज हो ही ना सके, ठीक है? तो अगर अच्छे तरीके से, जहाँ हमारे घरों में और जो खूबसूरत जगह हैं, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, किचन है, सब कुछ है, तो अगर एक खूबसूरत सा ऐसा कमरा बनाएं जिसको लाइब्रेरी कहें या प्रेइंग एरिया, कि जहाँ जाके खुद पढ़ने को दिल चाहे, अच्छी सी बुक्स रखी हुई हैं, जाए नमाज है, साफ़ सुथरा है, थोड़ी सी उसमें खुशबू आ रही है, कोई इस तरह से स्प्रे किया हुआ है, तो इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों से आप महसूस करेंगे कि ऐसी चीज़ों से स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है और इबादत का खुशू बढ़ जाता है, ठीक है? अब अगला इशू क्या है कि ज़माने जाहिलियत में बनी हुई मुशरिकों की कब्रों को उखाड़ कर इनकी जगह मसाजिद बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। हल तुम बशु कबूर मुशरिकिल जाहिलियती व युत्तखज़ु मकानुहा मसाजिद। और आपको इसमें पढ़ के आगे हैरत होगी कि आज जिस जगह को अल्लाह ने मस्जिद नबवी के लिए चुना है, कल के दौर में यहाँ मुशरिकों की कब्रें भी होती थी। तो अल्लाह ज़मीन के टुकड़ों के नसीब कैसे बदलता है, तवील हदीस है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको इंजॉय करेंगे। अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा, हज़रत आयशा से रिवायत है, यानी इस हदीस की राविया वो हैं, अन्न उम्म हबीबत व उम्म सलमत रदियल्लाहु अन्हुमा, कि हज़रत उम्म हबीबा और हज़रत उम्म सलमा, अल्लाह उन दोनों से राजी हुआ। ये दोनों कौन थी? नबी सल्लम की अजवाज थी, आपकी अजवाज थी, और हज़रत आयशा की क्या लगी? सौंकने लगी, ठीक है? क्या कहती है? ज़करना कनीसता, उन्होंने जिक्र किया हमसे एक कनीसा का, कनीसा क्या था, गिरजा, चर्च। राइनहा बिल हबशा था, जिसको देखा था उन्होंने हबशा में। फीहा तसावीर, जिसमें तस्वीरें थी। फजकरता ज़ालिक लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उन दोनों ने इसका जिक्र किया अल्लाह के नबी सल्लम से। फकाल इन उलाइका, बस ये वो लोग हैं। इज़ा काना फीहिम रजुलु सालिहु, जब उनके बीच में कोई नेक शख्स होता। फरमाता, फिर वो मर जाता। बनाऊ अला कब्री ही, बना देते उसकी कबर पर मस्जिदन मस्जिद। बस सब वरूफ़ी ही, और डाल देते उसमें ज़ालिका सुवरा, तस्वीरें। यानी जब कोई शख्स मर जाता कबर पर मस्जिद बनाते और उसकी तस्वीरें बना देते। उलाए का शरारुल खल्की इंदल्लाहि यौमल क़ियामा, ये बदतरीन लोग होंगे क़्यामत के दिन अल्लाह की नज़र में। अब इस चीज़ में देखिए क्या समझ आया आपको। पहली बात देखिए कि जब कोई फौत होता है तो यहूद और नसारा क्या करते थे, उसकी तस्वीरें बना देते थे। आज लोग क्या करते हैं, उनकी कब्रें बना देते हैं। आज तो लोग कब्रों पर सजदे करते, उनका तवाफ करते, सब कुछ है। आज भी सिंध में लोगों ने काबा बनाया हुआ है, लाल शहबाज कलंदर के नाम पर एक दरगाह है, उसके ऊपर वो कई किस्म के काम करते हुए दिखते हैं। तो इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता, ये सरासर शिर्क है। ये सब चीज़ें, बुज़ुर्गों की कब्रों पे मस्जिद बनाना और वहाँ कुछ उर्स रखना, खुशबुएं लगाना, वहाँ जाके ग्रेटिट्यूड पेश करना, ये यहूद और नसारा की आदत है। अल्लाह के नबी ने इसको हराम किया। और आप देखिए कि तस्वीर कुशी को हराम करके बुत परस्ती की जड़ काट दी। हज़रत नूह की कौम में जो शिर्क फैला था उसकी वजह भी यही थी। तो आप कह सकते हैं कि इस्लाम तस्वीरों की इतना क्यों अगेंस्ट है। बाज़ लोग कहते हैं क्या हर्ज है, अपनी शक्ल ही होती है और अपनी तस्वीरें, और क्या वो उसको घर में लगा दें और दिस एंड दैट। तो उसकी वजह क्या है कि आप देख सकते हैं कि इसी से शिर्क फैलता है। आज भी आप देखिए कि कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ तस्वीरें लोग लगाते हैं। वैसे एक स्कूल है, वो किसी ने बनाया, फाउंडर के नाम पर उसकी तस्वीर लगा देंगे, फिर आगे जाएंगे तो उसके प्रिंसिपल की लगा देंगे, फिर अगले सालों में जिसने उसमें कुछ और हिस्सा डाला डाल दिया। हमारे कई हॉस्पिटल्स में, स्कूलों में, इवन दीनी जगहों पे भी आप देखें कि ये चीज़ें लगी होती हैं, ये इंतहाई नापसंदीदा है। इवन अपने मुल्कों में देखिए, बानिए पाकिस्तान के नाम पे लगाएं या किसी को शायर इस्लाम के नाम पे लगाएं, बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं, चाहे वो आपकी कोई अदालत है, कुछ है। इवन अपने मुस्लिम मुल्कों में एयरपोर्ट्स पर इन चीज़ों पर तस्वीरें आप लगी होती हैं, इस्लाम इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। तस्वीर एक ज़रूरत है, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है उसको रखें, दैट्स इट। तस्वीर की इज्जत करना और उसको प्रोटोकॉल देना और उसको सजाना, ये कतन इस्लाम का मिजाज नहीं है। और ये तो कितनी वाज़े हदीस है कि आप देखिए कि जब कोई नेक शख्स मरता था तो उसकी कब्र पर मस्जिद बनाते। अब आप देखिए कि आज जितने भी मज़ार हैं पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में या दुनिया में कहीं, उसके पीछे क्या है, पहले कब्र अलग बनती है, फिर कब्र अलग बनती है तो फिर उसके नाम पे होता है ये किसकी कब्र है, कतबा लगाते हैं। कतबा लगता है तो फिर बाज़ दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता उसके इर्द गिर्द जंगला लगा देते हैं, जंगला लगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर एक डोम लग जाता है, फिर लोग आते जाते बैठ जाते हैं। यकीन करें, ऐसी ऐसी बातें सुनी हुई है जहालत की लोगों से कि आप सोच नहीं सकते कि किसी कब्र की, मुझे याद है कहानी जो सुनी हुई है कि कुछ कब्रें आज पाकिस्तान में ऐसी भी हैं कि जिसके अंदर कोई इंसान नहीं दफन, वहाँ किसी पीर साहब की गोदड़ी दफन है। मेरी अपनी नानी का घर है जहाँ, तो उसके करीब इलाके ही मशहूर इस नाम से है, रक्शे वाले को लोग बताएं, टैक्सी वाले को बताएं, पीर गोदड़ी के पास जाना है, गोदड़ी शरीफ है जी, जगह का नाम है पीर गोदड़ी। अब वो गोदड़ी क्या होती है आपने भी नहीं कभी सुना होगा, चादर को कहते हैं, ये जो रंग बिरंगी चादर नहीं होती, अजरक टाइप की, गोदड़ी मीन चादर, जैसे मुजम्मिल या मुदस्सर है। बाद में उसकी कहानी क्या है, वहाँ जाके अंदर पड़े, इतने ना समझ लोग होते हैं वहाँ कि जो वहाँ उधर ये सारी कहानी लिखी हुई है कि ये जो कब्र है इसके अंदर पीर साहब नहीं है, उनकी गोदड़ी दफन है और उनकी चादर दफन है, शुरू में वो दफन हुई, होते होते अब लोगों ने वहाँ पूरा कब्रिस्तान बनाया हुआ, ला हौला वला कुव्वते इल्ला बिल्ला। फिर इसी तरह से कुछ और भी कहानियाँ ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें लगती हैं कि कैसे कहीं सिर्फ एक आलू दफन है तो आलू शरीफ के नाम पर वो मज़ार बन गया, और कहीं घोड़े शाह, और कहीं कुछ, और कहीं कुछ, और लोग अपने जैसे बेबस इंसान जो खुद दुनिया से चले गए उनकी कब्रें बना के बैठे हुए, तो आप बताइए कि उनकी ना समझी में और किसी को क्या शक होगा। तो लिहाजा ऐसा सब मिजाज फर्क है। अब फिर वही सवाल जो पीछे भी कहीं गुजरा होगा आपके जहन में, फिर तो मस्जिद नबी भी देखिए, अल्लाह के नबी की कब्रें मुबारक है और वो भी साथ मस्जिद है, वहाँ तो अबू बकर भी, उमर भी है। तो इसका जवाब वही है जो पहले भी दिया गया होगा, अगर आपने सुना है कि मस्जिद नबी वहाँ पहले से मौजूद थी, आप अपनी बीवी के हुजरे में दफन है। और नबियों के मामले में अल्लाह का हुक्म यह कि वो जहाँ फौत होते हैं वहीं दफन होते हैं, ये अल्लाह का एक कानून है। तो लिहाजा वो मस्जिद भी पहले से थी, वो घर भी पहले से था। ये नहीं हुआ कि पहले अल्लाह के नबी को वहाँ दफन किया गया फिर मस्जिद नबी वहाँ बनी कि जी कब्र के साथ बनानी है। और दूसरी बात देखिए, आज भी अल्लाह के नबी का जो रोज़ा है वो हद है, बस उसके बाद बाहर डोर है, यानी मस्जिद नबी की जितनी तोसी हुई है, जो उसकी अंदर एक्सटेंशंस हुई हैं, वो सारी इस तरफ हुई हैं, अंदर नहीं गई। और आगे जाके कभी सऊदी हुकूमत मस्जिद नबी की इस तरफ से वुसअत नहीं करेगी। वजह क्या है कि फिर कब्र अंदर आएगी और फिर हो सकता है इधर भी सफ है, इधर भी, इधर भी, इधर, फिर तो साफ शिर्क शुरू हो जाएगा। लेकिन इत्तफाक हुआ है कई ऐसे अरब मुल्कों में, दुनिया के जाने के बड़े मारूफ मुल्क हैं, लेकिन आप देखिए किसी मस्जिद में भी हम गए नमाज के लिए और अंदर से यही खबर निकली कि इसके अंदर कब्र है, और वो टूरिज्म के नाम पे लोगों से आबाद रहता है। और हम सिर्फ इसलिए वहां नमाज नहीं पढ़ पाते थे कि मस्जिद के अंदर कब्र बनी हुई है, बाहर खड़े होकर पढ़नी पड़ती थी। और बाद मस्जिदें तो ऐसी थी कि वो कहते थे कि इसके जिस फ्लोर पे हम खड़े हैं इसके नीचे पूरा कब्रिस्तान है, कि खड़े होकर खौफ भी आता था, और लोग जाके फिर आदतन जाके वहां कब्र पे सलाम भी करते हैं। इस्लाम ऐसी चीजों की जड़ काट देता है, तो लिहाजा ऐसी चीजों की इजाजत नहीं है कि इंसान इसको लेकर चले। फिर इसके बाद अब अगली हदीस है जिसमें ये बात बताई जा रही है कि किस तरह से मस्जिद नबी की जो जगह थी वो पहले किस हाल में थी। अन अनस रदी अल्लाह अनहु काला, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अनहु से रिवायत है, फरमाते हैं कदीमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मदीना था, नबी सल्लम मदीना तशरीफ लाए, फनजल आला अल-मदीना थी, फिर आप मदीना के आला मुकाम यानी जो ऊपर का मुकाम है वहाँ पर आ पाए, फिर हई एक कबीला युकाल लहुम बनु अमर इब्ने औफिन, वो कबीला जिसको अमर बिन औफ कहा जाता था, यानी जब नबी सल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो सबसे पहले अमर बिन औफ नामी कबीले में आपने पड़ाव डाला। फ़अकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पस क्याम किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फी ही मिन में अरबा आशरत लैलन, 4 और 10 यानी 14 रातें, यानी तकरीबन 2 हफ्ते आपने इस कबीले में क्याम फरमाया। सुम्मा अरसला इला बनी नज्जार, फिर आपने बुलवाया, ये जो लफ्ज़ है ना अरसला इला, बुलाने के मानों में होता है, ठीक है, अरसला एक खाली होता है भेजना, लेकिन इला लग जाए तो बुलवाना। फिर बुलवाया नबी सल्लम ने बनी नज्जार, बनी नज्जार को, ये कौन सा कबीला था, जो नबी सल्लम के दादा अब्दुल मुतलिब के ननिहाल थे, यानी अल्लाह के नबी के अपने माँ की तरफ से भी मिलता था लेकिन आपके दादा अब्दुल मुतलिब के ननिहाल से था। खैर इनको बुलाया, रिश्तेदारी थी अल्लाह के नबी से, फजाओ फस वो आए, मुतकल्लिदीन सुयूफ, गर्दनों में हायल किए हुए तलवारों को। मुतकल्लिदीन क्या है, कलादे से, कल्द गर्दन में लटकाई हुई थी, सुयूफ, सुयूफ सैफ की जमा, ये जो लफ्ज़ है ना मुतकल्लिद, ये इसी से वो लफ्ज़ है जिसको लोग मुकल्लद कहते हैं, आपने नाम सुना होगा मुकल्लिदीन और गैर मुकल्लद। मुकल्लद कौन होता है, जो किसी एक इमाम की इताअत का पट्टा गले में डाल ले, यानी हर वो इंसान जो ये सोचता है कि किसी एक की कोई निस्बत या उसका पट्टा गले में डालना लाजमी है, जो वो कहेगा वो करना है, यानी वो बाज़ दफ़ा इस हद तक इस चीज़ पे जम जाते हैं कि उनके सामने सही हदीस आ जाए, कुरान की आयत आ जाए, लेकिन वो उससे नहीं हटते, तो ऐसे लोगों को मुकल्लद कहते हैं, और सुयूफ सैफ से है। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के नबी ने उनको बुलाया और वो गले में तलवारें डाल के आ गए, ये क्यों आए, तो ये असल में इस बात की दलील थी कि हम आपके साथ हैं, हम आपका तहफ़ुज़ करेंगे, हम आपकी हिफाजत करने को तैयार हैं, और अगर कल किसी जगह दुश्मनी किसी से आपकी होती है तो हम आपका साथ देंगे। देखिए अरब लोगों का ये कल्चर था, इवन किसी से वो दीन की तरफ से मिलते थे कि नहीं, यानी उनके दीनी अंदाज को पसंद करते थे कि नहीं, लेकिन उनके नाम पर यानी जब वो दिफा और उनके नाम पर जंगे लड़ने का होता तो जैसे खानदानी मुरव्वत नहीं एक होती, उसके नाम पर भी काम आते थे, तो गोया कि आपसे मोहब्बत की अलामत उन्होंने साबित की। खैर कानी अनजुरिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला राहिलतिही वाबू बकर रिदफुहु, ये साहबी कहते हैं अनस कि इस तरह उस मंजर को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ गोया के अल्लाह के नबी ऊँटनी पे सवार हैं और अबू बकर कौन है, रिदफुहु आपके रदीफ हैं, यानी आपके पीछे बैठे हैं, व मलऊ बनी नज्जारी हौलहू, और बनी नज्जार के जो सरदार हैं वो आपके पास हैं, यानी सहाबी को वो मंजर याद आ गया कि मैं ऐसे लग रहा है कि आज भी वो मंजर अपनी आंखों से देख रहा हूँ। हत्ता यहाँ तक के अल रहलहू बी फिनाय अबी अय्यूबिन, यहाँ तक कि आपकी सवारी हजरत अबू अय्यूब अल अंसारी के घर आ गई, वकान युहिब्बु अन युसल्ली हैसु अदरकतहु सलात, और बेशक वो मोहब्बत करते थे या वो पसंद करते थे इस बात को, यानी आप इस बात को पसंद करते थे कि जिस जगह नमाज का वक्त आ जाए वहीं नमाज भी पढ़ लेते थे। खैर, फिर नमाज आपने वहाँ पढ़ी और साथ ही साथ आपने फरमाया वयुसल्ली फी मराबिज़िल गनम, फिर आपने बकरियों के बाड़े में भी नमाज पढ़ ली, यानी आप को जब भी नमाज का वक्त आता वहीं नमाज पढ़ते, और हत्ता कि अगर कभी बकरियों के बाड़े से भी आप गुजरते वहाँ नमाज का वक्त आता तो वहां भी पढ़ते। वन्नहु अमरा बिबिना इल मस्जिदी, तो आपने हुक्म दिया यहां मस्जिद बनाने का। यानी आप सोच रहे हैं मदीना पे आप आए और एक जगह है और वहां आप रुके, पहले तो आपने हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने अपना पालान रख दिया, यानी कि वहां आपने रहने का इरादा फरमाया, लेकिन जिस जगह आपकी ऊँटनी बैठ के फिर उठ गई थी वहां आपने नमाज पढ़ी। हालांकि बास औकात ऐसा भी होता था कि बकरियों के बाड़े में भी पढ़ लेते थे, लेकिन वहां उस वक्त बकरियों का बाड़ा नहीं था। ये एक सहाबी ने अपने ऑन पे बताया कि नबी की आदत थी जहां रुकते नमाज पढ़ते। इसमें अमल की बात है, कहीं भी आप रुकते हैं, सफर में, सफर से उठे, गाड़ी में उतरे, बैठे, दोबारा जब बैठे तो दो नफिल पढ़ लें। यानी सफर में नमाज और खास पे नफिल नमाज का इस तरह से इख्तमाम करना चाहिए। आप कहते हैं कि जहां से गाड़ी के टायर गुजरते हैं, मां कदम हुआ सा रहूं, आप दो नफिल भी पढ़ रहे हैं गाड़ी में बैठकर, तो उस दौरान कम से कम एक मील तो गाड़ी कर ही लेती होगी ना सफर। एक मील पर आपकी नमाजों और सजदों के निशान पहुंच सकते हैं, और बहुत सारा वक्त होता है हमारे पास गाड़ियों में, ऐसे इधर उधर देख रहे होते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे होते, सोच ही रहे होते हैं। चलिए, एक तो बंदा गाड़ी चला रहा है उसकी तो बात अलग है, जो दूसरे बैठे होते हैं तो उनको अपने वक्त का बेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। मोमिन जो होता है वो इन्वेस्टर होता है, अपने वक्त को इन्वेस्ट करता है, अपनी स्किल्स को इन्वेस्ट करता है। तो गोया कि अल्लाह के नबी ने इस बात से हमें ये सिखा दिया कि जब भी कहीं जाएं तो वहां नमाज पढ़ें, और जब नमाज पढ़ ली कहा कि अब दिल चाहता है कि यहाँ की मस्जिद बन जाए। फरसले अल-मलाए मिन बनी नजार, आपने ये बुलवा भेजा बनी नजार वालों को, फकाला फरमाया या बनी नजारी सामिनूनी बिहा इतिकुम हाजा, कीमत में दे दो ये अपना बाग तुम मुझको, यानी बनी नजार का वो बाग था, तो आपने उनसे कहा कि अपना ये बाग हमारे हाथ बेच दो। हायत वही है जिसको बाग कहते हैं, अहाता कह लीजिए, या जैसे जमीन का एक टुकड़ा किता। आपने कहा कि ये जगह अच्छी लगी है, इसको हम मस्जिद बनाना चाहते हैं। कालू, कहने लगे ला वल्लाहि, नहीं अल्लाह की कसम, ला नतलुबु समनहु इल्ला इलल्लाह, हम नहीं तलब करते इसकी कीमत मगर अल्लाह से। यानी उन्होंने कहा हम बेचेंगे नहीं, हम इसको फ्री अल्लाह के लिए देते हैं, यानी हम इसको मस्जिद बनाने के लिए दे देते हैं। यहाँ आप देखिए कि मैं इस चीज़ को पढ़ रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि नसीब की बात है ना, ये जगह जहाँ आज मस्जिद नबी है बनु नजार ने बग़ैर किसी कीमत के डोनेट कर दी अल्लाह के नबी के सामने, ये जो भी मस्जिद थी, आज तक वहाँ कितनी इबादत हो रही, छोटी सी नेकी की ना। उस वक्त उन्होंने क्या दिया होगा, क्या उन्होंने सोचा था कि वहाँ इतना सा काम होगा। बस दफा हम इतने कंजूस हो जाते, इतने स्टिंजी होते, हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन हम कहते नहीं उस बच्चे के काम आएगा, उस बच्चे का क्या बनेगा, उसका होगा, ये होगा, ये होगा, वो होगा, और हम सोचते भी नहीं इन चीज़ों को। और मैं सोचती हूँ कि अल्लाह माल दे तो माल से गनी भी कर दे, बेनियाज कर दे। यानी इस तरह के लोग भी बस दफा सामने आते हैं कि वो यूं अपनी चीज़ अल्लाह के रास्ते में पकड़ाते हैं, जैसे यकीन करें कोई 10 पाउंड का नोट भी नहीं पकड़ाता होगा इस रंग से। भाई आप क्या कह रही हैं, नहीं उस ऐसी है, नहीं उस ऐसे रख, ये ऐसी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा नहीं, हम तो ये औसु बिल्ला, ये आप कैसी बातें कर रही हैं। मैं सोचती हूँ शायद लोग जोश में कह रहे होते हैं, होश नहीं है इनको, लेकिन बाद में वो पूरे होश का सबूत भी दे देते हैं। तो नीयत आए दिल में, नेकी की इरादा कर लीजिए, कल जो होगा देखेगा, और आप देखिए कि अल्लाह के नबी ने उनसे कबूल ये किया तो आज वो अजर में आ गए। किसका फ़ायदा हुआ, क्या नबी को मिला? कोई दीन के नाम पर अगर कोई चीज़ नबी को देता है तो वो नबी को मिलती है, नबी को तो नहीं मिलती। हाँ, नबी के कहने पे मिली तो नबी को भी उसमें अल्लाह ने हिस्सा दिया होगा कहने का, और आपने सिर्फ नियत की ना कि मैं इधर मस्जिद बनाता हूँ, अदर सारा वो ले गए। और आज आप देखिए कि जितनी एक्सटेंशन मस्जिद नबी की होती हैं और बैतुल्ला की, आप देख ही रहे ना दिन ब दिन, इवन आप सुनते हैं कि फलां होटल भी अंदर आ जाएगा, फलां भी डाल देंगे। बाज दफ़ा हम सोचते हैं हाय इतना इनका होटल चल रहा है ये इसमें डाल देंगे, अब इनना मलामाल बिन नियत, आपको नहीं पता कि वो कल क्या होगा, शायद वो सवाब की नीयत से डाल दें, सवाए शायद उनको जो जगह उनकी 1 मिलियन की तो उनको 10 मिलियन गवर्नमेंट दे दे। यार एक का मामला है, तो हमेशा मोमिन की नज़र मुस्तकबिल पे होती है। तो इन्होंने कहा कि ला वल्लाह हम नहीं लेना चाहते, हम तो अल्लाह से लेंगे। फ़काल अनसुन, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं फ़कान नफ़ीही मा अकूलु लकुम कुबूरुल मुशरिकीन, कहते हैं मैं तुम्हें बताऊँ इस बाग में क्या था, یعنی ہمیں حضرت انس سنوا رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے وہاں کیا تھا؟ وہاں تو مشرکوں کی قبریں تھیں، اور کیا تھے؟ وفیہ خرابن، اور اس میں کھنڈر تھے، ٹوٹے پھوٹی جگہیں تھیں، وفیہ نخلن، اور کچھ کھجوروں کے درخت بھی تھے. اللہ اکبر، کل تک کیا جگہ تھی اور آج کیا بن گئی؟ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حکم دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بقبور المشرکین فنبشت، کہ مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی گئیں، ثم پھر بالخرب سویت، اور جو وہاں کھنڈر تھے ان کو گرا دیا گیا، یعنی ڈیمولش کر دیا گیا ان بلڈنگز کو، وبن نخلی، اور جو کھجور کے درخت تھے، فقوتیا، وہ کاٹ دیے گئے، فصف النخلہ قبلۃ المسجد، اور کھجوروں کے درخت کاٹ کر ان کی لکڑیوں کو مسجد کے سامنے نصب کر دیا گیا. اب اس وقت بیت المقدس کیا تھا؟ قبلہ تھا نا، چونکہ شروع میں یہی حکم تھا، تو اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، اور اس کی طرف یعنی پتھروں کو رکھ کر ایک قسم کی ڈائمنشن شو کر دی گئی کہ یہاں پہ یہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھا جائے گا. وجالو، اور کر دیا، اذا تئیہ الحجارہ، یعنی اس کی بندش یا اس کو ایک رخ دینے کے لیے پتھر رکھ دیے گئے. وجالو ینقلون الصخر وهم یرتجزون، اور وہ منتقل کر رہے تھے پتھر، یعنی اٹھا کر پتھر ایک جگہ سے رکھ رہے تھے، اور اس وقت وہ رجزیہ شعر پڑھ رہے تھے. یہ جو لفظ ہے نا یرتجزون، یہ وہی لفظ ہے جس کو اردو میں ہم رجزیہ کہتے ہیں. رجزیہ کیا ہوتا ہے؟ بہت ایموشنل، جیسے کام کرتے ہوئے کچھ لوگ گنگنانے لگ جاتے ہیں نا، انجوائے کرتا ہے جب کسی کام کو انسان، تو بہت گنگناتا ہے. تو کہا کہ اس وقت وہ بھی، ون نبی یو صلی اللہ علیہ وسلم ماہم، اور اللہ کے نبی ان کے ساتھ کیا رجزیہ شعر کہہ رہے تھے؟ وہو یقولو، اور وہ کہہ رہے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الاخرتی، اے اللہ کوئی خیر نہیں مگر خیر آخرت کی، فاغفر للانصار والمہاجرہ، بس بخش دے انصار کو بھی اور مہاجروں کو. اب یہ دیکھیے کہ اس وقت جب مسجد کے لیے کام کیا جا رہا ہے تو خوشی خوشی یہ اشعار پڑھ رہے ہیں، کیا پتہ چلا، انجوائے کر رہے ہیں اپنے کام کو. جب کسی کام میں دل لگتا ہے نا، تو نہ تھکن ہوتی ہے، نہ وقت کا احساس ہوتا ہے، اور نہ انسان اس کا کسی پہ احسان جتلاتا ہے. آپ سوچئے کہ بعض لوگ دین کے کام اس طرح سے کرتے ہیں کہ نہ کرنے والا ان کو دیکھ کر حیران ہو رہا ہوتا ہے، تھک رہا ہوتا ہے، پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ انجوائے کرتے ہیں. ان کو کام بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کام کو پھر انجوائے بھی کرنا ہوتا ہے. یہ ایک چیز اللہ سے مانگنے کی ہے. یقین کرے، جس کو اللہ نے یہ دے دی، یہ ہے اصل میں اس کے اوپر اللہ کی خاص رحمت. اپنے اوپر لے کے ہم پوچھیں، سوچیں، آپ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اس کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ کیا نیکی کا کام کر کے بڑبڑانا، روب ڈالنا، اور کچھ نہیں تو کم از کم جتلانا؟ کوئی نہیں جتلاتا. مجھے ابو بکر صدیق کی بات یاد آتی ہے کہ جب پوچھا کہ اللہ کے نبی نے پوچھا، تم میں سے کون ہے جس نے بیمار کو دیکھا؟ تو ابو بکر تھے. کس نے صدقہ دیا؟ تو ابو بکر تھے. کیوں نماز پڑھنے کے دوران ابھی جاتے ہوئے گھر سے راستے میں ابو بکر کو یہ کام نظر آ گئے، دوسروں کو نہیں آئے؟ کیونکہ ان کی نظر اجر پہ تھی. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. میں خود رش کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں، اللہ ایسا تو سب کو بنا دے، مجھے تو ایسا ضروری بنا دے، جس نیکی کا سوال کرو وہ خود نہیں بتائیں گے، لیکن پوچھنے پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام بھی ان کے ہاتھ سے ہوا ہے، یہ کام بھی ان کے ہاتھ سے ہوا ہے. آپ دیکھیے، 18-18 گھنٹے تک لوگ کھڑے رہتے ہیں اپنے کاموں پہ، ان کی نیند 1-2 گھنٹہ، اور وہ ہم سب سے زیادہ فریش، ہیلدی، اسمارٹ، اور لوگوں کو دیکھ کر خوش ہونے والے. ہم سارے آرام کر کرا کے بھی پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم ادھر سے تھکے ادھر سے تھکے. فرق کس چیز کا ہے؟ موٹیویشن کا فرق ہے. ایک لیڈر ایسا سامنے آ جائے نا کہ جو خود اس طرح کا موٹیویٹڈ ہو، اس کا اثر ہوگا، وہ آگے سے آگے چلے گا. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی جوش اور جذبے دے جو اللہ کے نبی کے تھے. آپ دیکھیں نا، اللہ کے نبی خود اس میں حصہ لے رہے ہیں اور لوگوں کو جوش دلا رہے ہیں، اور آپ بھی پتھر اٹھا رہے ہیں، صحابہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور ساتھ شعر پڑھ رہے ہیں کہ اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ، کہ اللہ دنیا میں خیر لے کے کیا کرنا ہے، یعنی مراد ہے کہ یہاں آرام کیا کرنا ہے، ہم تو آخرت میں کریں گے. اور فاغفر للانصاری والمہاجرہ، اور یقین کیجئے کہ وہ تھکتے وہ نہیں ہوں گے. گھر بیٹھے وہ جو منافق تھے جو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، اللہ کے نبی مدینہ میں آ گئے، اب یہ ہوگا، وہ گھر بیٹھ کے ہول رہے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی بہت انجوائے کرتے تھے. تو اس حدیث میں جو ہمارے اس ٹاپک سے ریلیونٹ بات کیا ہے کہ جس جگہ پہ پہلے کافروں کی، مشرکوں کی قبریں تھیں، آج وہاں مسجد نبی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ کہتے کہ کچھ عرصے کے بعد تو ویسے ہی میت مٹی میں مل چکی ہوتی ہے، تو لہٰذا بوقت ضرورت اگر اس طرح کے حالات ہوں تو قبروں کو کلیئر کر کے، ان کو بیلنس کر کے پھر آگے کیا جائے گا. اور آج تو آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ کچھ عرصے کے بعد قبرستان جو سعودی عرب کے بھی خاص طور پہ جنت المعلیٰ ہے اور جس طرح جنت البقیع جس کو بولتے ہیں تو اس کو پیرلل کر دیتے ہیں، یعنی وہ نیچے دب جاتی ہیں اور اس کے اوپر اور آ جاتی ہیں. آپ خود تو سوچیں نا کتنی کو جگہ ہے، آپ لوگ جا کے دیکھے ہوں گے اگر، جنت البقیع کتنی کو بڑی ہے، اتنی بڑی نہیں ہے. لیکن آپ کیوں سنتے ہیں، کب سے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک وہاں لوگ دفن ہو رہے ہیں تو کدھر جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد پھر قبروں کو اسی طرح سے پیرلل کر دیا جاتا ہے. مٹی میں جب مل جگے تو پھر اس کے بعد کیا. تو لہٰذا قبروں کو پکا کرنا، اس پہ نام رکھنا اور یہ نشانیاں ڈال دینا، اسلام اس کو کتنی اہمیت نہیں دیتا. ٹھیک ہے، اگلی ایک حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں. الصلاۃ فی مواد الابل، اونٹوں کی جگہ پر نماز پڑھنا. اب آپ دیکھیں جانوروں کے باڑے ہیں، پیچھے ہم نے دیکھ لیا کہ بکریوں کے باڑے میں بھی پڑھ لیتے تھے، یہاں اونٹوں کی بات ہے. تو اس کو پڑھ کے پھر اس موضوع پہ تھوڑی سی بات کریں گے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان یصلی علی بعیرہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک وہ نماز پڑھتے تھے اونٹ پر. وقال، اور فرمایا، رأیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو ایسا ہی کرتے ہوئے. تو اب آپ دیکھیے کہ پہلی بات تو کیا تھی کہ جہاں جانوروں کا فضلہ پڑتا ہے، تو ادھر مسئلہ سمجھ لیجئے کہ حلال جانور، یعنی بکری حلال جانور ہے نا، اونٹ بھی حلال جانور ہے جس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں، تو ان کا فضلہ یا ان کا پیشاب جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے نجس نہیں ہوتا جس طرح کے جو بیس ہیں، یا بیس کو کیا کہتے ہیں، درندے ہیں، شیر، چیتا اور گدا، یعنی جو حرام جانور ہے ان کا فضلہ بھی حرام ہوگا. کتا ہے، جہاں کتے کی کوئی گندگی پڑی ہے وہ تو ناپاک ہوں گی، لیکن اس طرح کے جانور ہیں اگر وہ کہیں ہیں، اب یہ نہیں کہ ضرور ان کی گندگی کے اوپر ہی پڑے. یہ بکریوں کے باڑے بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، تو اگر اتنی بڑی جگہ میں نماز پڑھنی تو بجائے اس کے اس کو چھوڑ کے وہ دور سڑک کے پار جائیں، تو اگر اسی میں سائڈ میں پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اس ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ دین چھوٹی چھوٹی پکی چیزوں پہ نہیں جاتا، پیٹی چیزوں پہ نہیں جاتا، بڑی پکچر میں چیز کو دیکھیے اور کر لیجئے. اب اونٹ کے اوپر آپ نماز پڑھتے تھے، آپ اونٹ کی طرف نماز پڑھتے اور فرماتے کہ میں نے ایسا کرتے دیکھا. تو اونٹ کی طرف پڑھنا کیا مطلب ہے کہ اونٹوں کی جگہ پر نماز پڑھنا حرام ہے. اور اس کی روایات ہیں، جب اونٹ سامنے بیٹھا ہو اس سے کسی قسم کا خطرہ نہ ہو، جہاں ممانعت ہے یہ کہ اونٹ کھڑے ہوں اور ان کی طرف سے لات مارنے کا خطرہ، اس میں کوئی تعارض نہیں. اب اس ایشو کو انہوں نے کس طرح پیش کیا کہ جہاں اونٹ بیٹھے ہوتے ہیں نیچے وہاں کہتے نہیں پڑھنی چاہیے. وجہ کیا ہے کہ اونٹ سے خطرہ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ اونٹ اٹھا بھی سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں کنڈیشنل ہے، کبھی اونٹ سے آپ کو خطرہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، لیکن اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. سواری پہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، نفل نماز ہے تو اونٹنی پہ بیٹھ کے وہ پڑھ لیتے تھے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض حالات میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نان مسلم جو ان کو پوچھتے ہیں، جیسے آگ ہے یا کچھ، تو اس پہ انشاءاللہ یہ آخری ٹاپک ہم پڑھ لیتے ہیں آج کے سبق کا. باب من صلی وقدامہ تنور او نار او شیئن مما یعبد فاراد به وجه اللہ تعالی. من جو کوئی صلی نماز پڑھے، وہ قدام ہو اور اس کے آگے ہو، تنور تنور ہو، او نارن یا آگ ہو، یا شیئن کوئی ایسی چیز، مما اس میں سے، یعبد جس کی عبادت کی جاتی ہو، فاراد بھی بس اس کا ارادہ کیا ہو اس کے ذریعے، وجه اللہ تعالی اللہ کی رضا جوئی. یعنی نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھے تو اس کے سامنے آگ ہو. جیسے آج کے دور میں دیکھیں ہیٹر چل رہا ہو، اب ہیٹر میں آگ ہے، یا آپ کے پاس سامنے جیسے قبلہ رخ آپ کھڑے ہوں تو آپ کے سامنے وہ جیسے فائر پلیس ہوتی ہے نا، جس میں کوئلے اور ڈال کے آگ جلاتے ہیں، تو کیا اس کے پیچھے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ سوال کیوں اٹھا؟ کیونکہ آپ کو تھا کہ جو مجوسی لوگ ہیں وہ سامنے آگ رکھتے ہیں پھر آگ کی پوجا کرتے ہیں. یا اسی طرح آج کے دور میں کوئی ایسی چیز جس کو لوگ پوچھتے ہیں، مثال ہے کہ کوئی بت ہے، کوئی کچھ ایسی چیز ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بڑا اہم ایشو ہے، آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اریدت علی النار، پیش کی گئی میرے اوپر آگ، وانا اصلی، اور میں نماز پڑھ رہا تھا. امام بخاری کا فہم دیکھیے کہ بات کو کس طرح سے جوڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ خود کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے آگے آگ پیش کر دی گئی. یہ ایک معجزہ تھا، اللہ نے اپنے نبی کو دکھا دیا. اب اللہ کے نبی کو جب وہ دکھا دیا گیا تو آگ تھی، تو آپ نے نماز تو نہیں توڑی. تو اس سے امام بخاری نے مسئلہ اخذ کیا کہ اگر اللہ کے نبی کے سامنے آگ دکھائی گئی اور آپ کی نماز ہو گئی کیونکہ آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے، تو اگر آج کسی کے سامنے مجبوری ہے، دیکھیں جان کے نہیں کرنا چاہیے، कि चलो कुछ आग को भी पूज लें, कुछ आग को भी अहमियत दे, इज्जत दें। नहीं, नॉर्मल घर में रहते हुए अगर कोई चीज़ सामने ऐसी आ जाती है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, इसको पीछे नहीं डालना चाहिए जान के। नहीं, अब इसी तरह की कुछ और चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे स्टैचूज हैं या कोई ऐसी चीज़ें हों कि जिसके ऊपर बिल्कुल ही कोई ऐसी चीज़ है, तो उन सब के बारे में यही हुक्म है। अगले चैप्टर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, कुछ बुतों की बात है, स्टैचूज की, तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक में ये बात आएगी कि तस्वीरें हों तो उसके बारे में क्या हुक्म है। लेकिन यहाँ इतना सा बस समझ लीजिए कि इस इरादे से आपने नहीं रखी कि आप उनको पूज रहे हैं, कोई कर रहे हैं, कोई किसी के घर गए, किसी जगह पे गए, कोई ऐसी चीज़ है, खतुल वजा आप अवॉइड कर लीजिए, उसके पीछे ना खड़े हो, साइड पे खड़े हो जाए। और अगर आपके अपने बस में तो उसको उठा भी सकते हैं, उस जगह से उठकर कहीं और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यह है कि आपकी नीयत अल्लाह के लिए हो। इन्नमल आमालु बिन्नियात। ठीक है, चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुक वअतूबु इलैक।